उसके आंसुओं का प्रवाह एकाएक रुक गया। मस्तिष्क के एक कोने में बरसों से सुरक्षित नाम पति के मुख से सुनकर स्मृतियों के बंद द्वार एकाएक खुलने लगे। वह चौंक उठी। अरे सतीश, सतीश तो उसका अपना लाल है, कोख से जन्मा रत्न। उसे देखे शांति को एक युग बीत चुका है। उसकी प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखों में धुंधलापन छा चुका है। अब लगता है अंधी हो जाएगी, और तब यदि पुत्र आ भी गया तो क्या होगा, उसे देखेगी कैसे। वियोगिनी के आंसू बह निकले। सोचने लगा था उसका मन, कितनी शीघ्रता से ये दिन बीतते रहे। सप्ताह, माह, वर्ष, कई वर्ष बीत गए और मुझे कुछ आभास ही ना हुआ। मैं बूढ़ी हो गई, एकाएक विश्वास नहीं आता। एक स्वप्न प्रतीत होता है ये जीवन, धुंध फैलाता एक बादल। कितनी निष्क्रियता लादी है इसने मेरे जीवन में। मेरा अतीत कभी वर्तमान भी था, कभी वे दिन साकार भी थे। मैं एकाएक हां नहीं कह पाती। बचपन बीता, जवानी गई, सब कुछ शेष भी बीतता जा रहा है। क्षण निरंतर गतिशील है। सतीश से मिले 13 वर्ष, एक लंबा युग जैसे बीत गया। अब तो यूं लगता है हमारे जीवन में सतीश की उपस्थिति मात्र एक स्वप्न थी। केवल स्वप्न, जिसके साकार होने की अब आशा नहीं। मगर ये विरह तो बढ़े जा रही है। मन की व्याकुलता उत्तरोत्तर तीव्र होती जा रही है। तब एकाएक उसकी व्याकुल वाणी पुकार उठी, सतीश, सतीश। और कुछ न कह सकी वह। वाणी उसकी रुंध गई। बरसों से व्याकुल हृदय करुणाजनक चीत्कारे मारने लगा। साधुराम ने देखा शांति भी रोने लगी है। दोनों की रात्रि की निस्तब्धता को भंग करती सिसकियों ने वातावरण को भयानक बना दिया था। साधुराम को इस सूनेपन का आभास हुआ। इधर उधर देखा उसने, खामोश दीवारें उसे घूरती प्रतीत हुई। निराशा देखकर तनिक डर गया। झट से आंखें पोंछ ली उसने और स्वयं को ढाढ़स बंधाने के प्रयत्न में शांति से बोला, तुम क्यों रोती हो। शांति ने दृष्टि उठाकर देखा साधुराम को कुछ इस तरह से कि जैसे उसी ने ही सब कुछ छीना है। हां, वही तो अपने हट पर अड़ा रहता था और छोटी छोटी बात पर लड़ता था। उसी ने ही तो उसके पुत्र से दूर किया था एक कटु दीवार चुनकर। वह मिल नहीं सकी सतीश से तो केवल इसी साधुराम की वजह से। साधुराम वही तो है जिसने शांति के ममतामयी कोमल हृदय को अपने कठोर वचनों से सुप्त कर दिया था। लेकिन भीतर ही भीतर वह हरदम घुलती रहती। समय आया जब साधुराम का हट टूट गया। पुत्र उसे भी याद आने लगा। कभी कभी तो वह विलाप भी करने लगता था अपने दोनों बेटों को याद करके। शांति भला तब कैसे चुप रह सकती थी। रोते रोते थक जाने पर दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते, दुख भूलने के लिए दूर कहीं खोकर अपने बचपन, अपनी जवानी के दिन याद करते। ऐसे में कभी जब शांति कहती उससे जाकर सतीश को मिलाने को, तब साधुराम कहा करता, जरा सोचो यदि उसके हृदय में हमारे प्रति कुछ स्नेह शेष होता तो स्वयं न चला आता हमारे पास। हम आप जाएं, इससे हमारा मान घटेगा। शांति, मैं पिता हूं और अपने जीते जी इस शब्द को इतना तो नष्ट ना होने दूंगा। हां, आ जाए वह, गले ना लगा लूं तो कहना। इस पर जब शांति पूछा करती, फिर अक्सर एकांत में क्यों इतना याद कर उसे आंसू बहाते हो, क्यों पुकार उठते हो आप उसे? तब साधुराम कहता, शांति, आंसू मैं अपने भाग्य के प्रति बहाता। सतीश के प्रति हमारा स्नेह अभौतिक है, उसी को स्मरण किया करता हूं। यह सुनकर शांति कुछ ना कहती थी। समय आया जब उन्हें सतीश के भौतिक स्वरूप की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन तब पता लगा कि समय के पंखों के साथ उड़कर उनका पुत्र कहीं और जा बैठा है, दूर एक शहर में। लेकिन वहां ढूंढ पाना उसे यह साधुराम के बस की बात नहीं थी। तब दोनों को अपने मन की इस उत्कंठा को, अपने आंसुओं के भार से, अपने बीत चुके दिनों की याद से दबाना पड़ा। और कभी जब इन सब को चीर कर वही उत्कंठा फिर उभर आती है तो उनकी तड़पन का कोई किनारा नहीं होता। कभी रोते हैं, कभी करुण शब्दों से एक दूसरे के मन को और अधिक रुलाकर शांत करने की चेष्टा करते हैं। एकाएक शांति के बहते आंसू रुके, लेकिन करुण शब्द फूट पड़े उसके मुख से। कहते हो मैं क्यों रोती हूं? हां, क्यों रोती हूं मैं? मुझे तो हंसना चाहिए, मुझे खुशियां मनानी चाहिए। मेरा कोमल हृदय जो टूट चुका है, मैं मां हूं, जानते भी हो, फिर भी कहते हो मैं क्यों रोती हूं? इतने अज्ञानी तुम कैसे? मेरी ममता पीड़ित है, जानते भी हो, फिर भी कहते हो तुम्हें दुख क्या? मां कब क्यों रोती है, कब क्यों स्वयं को पीड़ित कहती है, नहीं जानते क्या? आठों पहर मेरे साथ रहते हो, लेकिन मेरे दिल के दर्द को नहीं समझते। पत्थर तो नहीं तुम जो सुन समझ नहीं सकते मां के ममतामयी कोमल हृदय के स्वर को? शायद मन को इन शब्दों ने कुछ ढाढ़स बंधाया, वाणी की उग्रता कुछ शांत हो गई। तब बड़े करुण स्वर में कहने लगी, असंख्य इच्छाओं के बल पर अपनी मंगल कामना करते हुए मैंने कल्पना लोक में बहकर कई महल बनाए, परंतु होनी को कौन टाल सका है? मुझे कोई ऐसा ना मिला जो मेरे मन की था ले सके। एक को आदमी के हाथ की बनाई मशीन ने रौंद डाला, और दूसरे को इस समाज ने इतना बदल दिया कि उसके लिए हम दो अजनबी बन गए। राजा के वियोग में इतने आंसू अभी तक इन आंखों ने नहीं बहाए, जितने की जीते जागते अपनी दुनिया में मस्त सतीश की याद में बह रहे। जिस तड़पन से बचने के लिए हमने भक्ति अपनाई थी, मन ठहर गया था कितनी जल्दी। भगवान की मूरत में राजा की हस्ती खेलती सूरत दिखाई पड़ती थी, आज वह सब बिसर गया है। राजा जैसे हमारे जीवन का कोई अंग नहीं रहा, बस केवल सतीश है और उसकी याद तड़पाए जा रही है। लगता नहीं कि कभी यह तड़पन खत्म होगी। मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूं, कोई नहीं कहता कि ले मैं तेरा लाल ले आया। तुम भी बस अपनी ही कहते हो, कभी नहीं कहा चल रोती क्यों है, मैं तेरे लाल से मिला लाऊं। और ना उस निष्ठुर ने कभी सोचा मां रोती होगी, चलू चलकर उससे मिलाऊं। काश इस धरती में समा जाऊं कि उस जैसी विशाल बनकर कहीं भी बैठे अपने लाल को हरदम निहार सकूं, जहां भी वह जाए मुझसे दूर ना हो सके। काश मुझे मां कहने आ जाता कोई अभी, लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहां। आंसू उसके फिर बह निकले, आंगन का सूनापन उसे डराने लगा था। उससे दृष्टि चुराकर उसने सामने साधुराम की ओर देखा, वह चुपचाप बैठा निरीह भावों से उसे निहार रहा था। उसके शब्दों से शायद आज ही समझा था कि शांति उससे ज्यादा तड़पती है सतीश को याद करके। शांति प्रतिदिन अपने बीते दिनों को याद किया करती थी, वर्तमान उसके लिए पूर्णतः सूना था। पुत्र की याद में वह जब भी अश्रु बहाती अंतर मन की गहराइयों से जैसे सांत्वना भरे स्वर में उसे कोई कहता प्रतीत होता, शांति मत उदास हो, मत रो, तेरा लाल एक दिन तुझसे आ मिलेगा, वह माँ को याद करेगा, एक दिन उसे अवश्य ही माँ की ममता की पुकार सुनाई पड़ेगी, स्मरण कर वह पश्चाताप के आंसू बहाएगा, भागा भागा तेरे पास आएगा, तेरे अंक में सिर छिपाकर फूट फूट कर रोएगा। अंबर में कब तक पंछी विचरता रह सकता है, पंख थक जाते हैं तो विश्राम करने अपने नील को लौटता है, सतीश आएगा, शांति उसका नील तेरा अंक ही तो है, मत्रो मत्रो शांति। और मन में उठते आशा भरे इस स्वर को सुनकर शांति चुप हो जाती है। मगर कब तक यूं चलता रहता, कब तक वह पुत्र वियोग में भीतर ही भीतर घुलती रहती। आखिर वह भी एक स्त्री थी, कोमल भावनाओं से ओत प्रोत हृदय वाली एक माँ। साधुराम जब भी निराशा से भरे दो बोल उससे बोलता था, उसके हृदय का दर्द भी वाणी में ढलकर फूट पड़ता था। जीवन सागर केवल शांत सरल नहीं, इसमें तूफान भी आता है। सूर्य के आलोक में चांदी की भांति चमकता शांत नील कभी कभी भयंकर लहरों का रूप धारण कर लेता है। तब लहरें ऊंची ऊंची उठती है आकाश को छूने के प्रयत्न में, किनारे पर खड़े प्राणी को अपनी शक्ति के बल पर इन्हीं अज्ञात गहराइयों की ओर खींच कर ले जाती है। मगर एक समय फिर वही आता है, लहरें शांत हो जाती हैं, भयंकर गर्जना करती नीचे आ गिरती हैं और लौटकर सागर के अथाह नीर में कहीं खो जाती हैं। भावनाओं का तूफान थम गया था, वातावरण में पहले दिनों की भांति निस्तब्धता व्याप्त हो गई। आंगन में बिछी खाट पर साधुराम लेट गया, शांति उसके समीप ही अपनी खाट बिछाकर लेटी हुई थी। दोनों चुप थे, आकाश को घूर रहे थे, कहीं दूर से उठ रही स्मृतियों की पुकारों को सुन रहे थे। अर्धचेतन मस्तिष्क उन्हें स्वप्न लोक की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहा था। शांति शीघ्र ही कहीं दूर खो गई। अस्तित्व का मोह तब न जाने उसमें से कहां लुप्त हो गया था। उसका शरीर पूर्णतया ढीला पड़ा हुआ था, वह सो चुकी थी, लेकिन साधुराम अब भी आकाश को घूर रहा था। उसकी आंखों की नींद कहीं और विचर रही थी, आकाश में झिलमिलाते तारे और अपने आसपास उसे अंधकार के साए नृत्य करते दिख रहे थे। हृदय की गहराइयों में उतरकर साधुराम अपने मस्तिष्क में उभर रहे नए नए विचारों का अवलोकन कर रहा था। नित नई घटनाओं का अवलोकन करना, उनका स्पर्श पाकर किसी नए अनुभव का आभास पाना हमारे जीवन का ध्येय है। सृष्टि का प्रत्येक अंश एक घटना है और प्रत्येक घटना हमारे लिए ज्ञान का भंडार है। यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं। प्रत्येक बार एक चित्र का रूप धरे सामने आती है, उसका एकाग्र चित्त हो अवलोकन कर उसके द्वारा प्रसारित ज्ञान को अपने मस्तिष्क में संजो कर हम भूल जाते हैं कि कब क्या हुआ था। कहानी का मर्म समझ लिया, यही बहुत अधिक है। हमारा ध्येय है जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना, अपने जीवन कर्म को निरंतर गतिशील रखना। जो कार्य पूर्ण हो चुका है उस पर ही नहीं अपितु विकासशील पर भी ध्यान देना। अक्सर हम यही करते हैं, पुरानी बातों को भूलकर दैनिक जीवन के कार्यकलापों में लीन रहते हैं, लेकिन कभी कभी निराशावाद अपना प्रभाव दिखा जाता है, तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, अस्तित्व ज्ञान बिसर जाता है और साधुराम की भांति व्यर्थ की सोचते हैं। साधुराम ने केवल अर्थी देखी, यह कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी कि मस्तिष्क की घुंडी निराशा की ओर मोड़ दी जाए। साधुराम आज निराशावाद के सिद्धांतों का प्रेरक बन अपनी विचार शक्ति के बहाव को अपने अतीत के टूटे क्षणों की ओर मोड़ ले गया था। निराशावादी प्रवृत्ति ने उसकी आंखों में आंसू भर दिए थे। उसकी वाणी रह रहकर यही कहने को विवश हो गई थी, जैसे कि साधुराम दुर्भाग्यशाली है, साधुराम दुर्भाग्यशाली है। शांति ने उसे समझाया, सब कुछ साधुराम ने सुना, लेकिन वह चाहकर भी स्वयं को सांत्वना न दे पा रहा था। किसी की सांत्वना से मस्तिष्क को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक कि मस्तिष्कवादी स्वयं को, अपने हृदय को स्वयं सांत्वना देने का प्रयत्न ना करे, लेकिन वह तो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसका मन तो अपने उन्हीं क्षणों की ओर झुक गया था जिनकी कल्पना उसके अस्तित्व में सिहरन पैदा कर रही थी। अपने अंत की सोच कर जब वह सिहर उठता तो मन कुलबुला उठता उसका, और वह फिर उन्हीं दिनों की ओर जा पहुंचता जो उसकी इस सिहरन का कारण बने थे। उनकी याद कर कभी पश्चाताप महसूस होता उसे, कभी अपना दुर्भाग्य झलक उठता। वे दिन तो अब नहीं रहे जब मन कठोर था उसका, अपने विचार थे उसके, जिनकी आड़ लेकर वह अपने जीवन पर कठोर प्रहार कर बैठा था। बेटा यदि अपनी मर्जी से कुछ कर रहा था तो काश साधुराम उसे टोकने के, ताने मारने के अपनी प्रसन्नता प्रकट कर देता, तब शायद ये दिन ना आते उसके जीवन में, तब वह हंस तो सकता था खुलकर, तब उसे रह रहकर अपना अंत स्मरण ना आता और ना ही अस्तित्व में उसके कहीं सिहरन पैदा होती। लेकिन आज के साधुराम के मुख से निकलते अफसोस भरे शब्द यही कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ऐसा जब भी कहता है साधुराम तब उसे अपने उन शब्दों पर पश्चाताप होता है जो सतीश के प्रति उसके मुख से फूटते थे, कभी शांति के सम्मुख, कभी सतीश के सम्मुख। गलत कौन था, इस प्रश्न पर अब उसका बूढ़ा मन नहीं सोच पाता। बस वह सोचता है वे दिन, वे बातें, और कुछ सोचने का, विचार करने का उसमें अब दम नहीं रहा। अब भी वही सब कुछ सोच रहा था, उसका मन याद कर रहा था सतीश के संग दिल्ली में बिताए दिनों को। उन्हें दिल्ली आए 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी से उन्हें महसूस होने लगा था कि एक अरसा जैसे बीत चुका है उन्हें अपना घर छोड़कर यहां आए हुए। ऐसे में दोनों को अपना मन उचटता महसूस हो रहा था। दोनों के पास कुछ काम तो था नहीं। शांति को अब ना घर का काम करना पड़ता था, ना साधुराम के पास यहां कोई दुकान थी जिसकी गद्दी पर बैठकर वह ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपना समय बिता सके। घर के पास कोई मंदिर भी नहीं था कि सुबह शाम वहां जाकर आराधना कर सकते थे। बस घर पर ही कभी साधुराम रामायण या गीता पढ़कर अपना मन बहला लिया करता। शांति का मन होता तो सुन लेती थी, या फिर ध्यान मग्न होकर बैठकर मन ही मन ईश्वर का जाप करती रहती। लेकिन दिन भर तो ऐसा नहीं हो सकता था। कुछ समय सतीश सुमिता के संग घुल मिलकर बातें करने की लालसा थी उनकी, लेकिन ऐसा अवसर कभी कभी ही मिल पाता उन्हें। इस तथ्य का एहसास पिछले 15 दिन तक सतीश सुमिता की दिनचर्या को देखकर उन्हें हो गया था। उन दोनों ने अपनी दिनचर्या अत्यधिक व्यस्त बना रखी थी। 7:30 बजे वे सोकर उठते थे। नहा धोकर तैयार हो 9 बजे सतीश नाश्ता करके दफ्तर चला जाता था। घर का काम करने के लिए नौकर रखा हुआ था। सुमिता को थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ता था, जिसे वह 10 बजे तक पूरा कर लेती थी। तब वह तैयार हो अपनी सखियों के यहाँ चली जाती, या फिर वहीं उसकी सखियां आ जाती थी, जिनके संग बतियाते ताश खेलते दिन का 1-1.5 बज जाता था। तब खाना खाकर वह आराम करती थी। शाम को सतीश दफ्तर से लौटता तो दोनों तैयार होकर क्लब चले जाते। वहां से उनका लौटना 8 बजे के बाद ही होता था, और तब तक दिन भर की ऊब मिटाने के लिए साधुराम व शांति अपने अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की चेष्टा करते थे। ऐसा चक्र देखकर साधुराम सोचने लगा था कि वह पुत्र के साथ रहते हुए भी उससे कितनी दूर है, जैसे वह अब भी खन्ना में हो और सतीश दिल्ली में। मन शुद्ध सा रहने लगा साधुराम का सतीश के प्रति। चाहता था ना समझ बालक की तरह सतीश हर कदम उससे पूछकर उठाए, लेकिन ऐसा कुछ करना शायद सतीश अनिवार्य नहीं समझता था, और ना ही ऐसा कुछ जरूरी भी था कि कुछ करने से पहले वह अपने पिता से पूछता। जिसका सामाजिक घेरा अत्यंत संकीर्ण रहा हो वह सतीश को क्या समझ दे सकता था। साधुराम एक तरह से एक नई संस्कृति में रहने आया था। यहां आकर वह सतीश को अपने विचारा अनुरूप नहीं ढाल सकता था, बल्कि वह यदि कुछ बदलाव चाहता भी तो उसके लिए उचित यही था कि वह स्वयं को उसके सामाजिक रीति रिवाजों के अनुरूप ढाल ले। लेकिन इतना उन्मुक्त वातावरण, इतनी अधिक शानो शौकत उसके बस की नहीं थी। अपनी मध्यम वर्गीय एक छोटे से शहर में बीत चुकी आधी से ज्यादा जिंदगी के ऊपर लादनी, यह बोझ था उसके लिए। और इसी कारण जब उसने देखा कि महीने भर में आज दूसरी बार किसी जश्न मनाने का इंतजाम किया जा रहा है घर में, तो वह अपनी जिज्ञासा शांत नहीं रख सका। पूछ ही बैठा सतीश से, आज किस खुशी में पार्टी दे रहे हो बेटा? वह समझ रहा था कि इसका अवश्य ही कोई कारण होगा, और पार्टी का कारण कोई खुशी ही हो सकती है। फिर अपने बेटे की खुशी का कारण यदि बाप को ही मालूम ना हो तो क्या फायदा बाप बनने का। पिछली बार उनको दिल्ली आए अभी 2 दिन ही हुए थे, तब पार्टी का आयोजन किया था उसने, तो कारण बताया था कि सुमिता का जन्मदिन और सफर से लौट आने की खुशी। पहली बार वह दिल्ली से बाहर पति पत्नी के रूप में इकट्ठे गए थे। उस दिन की पार्टी में साधुराम भी शामिल हुआ था, और वहीं उसे मालूम हुआ था कि सतीश व सुमिता शादी से पहले भी एक बार मसूरी घूम आए थे। तब उसे न केवल इस बात का एहसास हुआ कि उसकी दुनिया और उसके बेटे की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, बल्कि इस बात का भी कि इस पार्टी में शरीक होकर जहां वह स्वयं को कितना हल्का महसूस कर रहा है, वहीं हंसी मजाक चुहलबाजी के बीच सतीश स्वयं को कितना बंधा हुआ महसूस कर रहा था। साधुराम देख रहा था कि सतीश चाहकर भी वह नहीं कर पा रहा जिसे करने की इच्छा उसके मन में हिलोरे मार रही थी। तब वह पार्टी समाप्त होने से पहले ही उठ आया था, लेकिन फिर भी उसके मन ने जो हल्कापन महसूस किया था उस दिन, वह उसकी शुद्धता को दबाकर उभर आया था। पार्टी शब्द एक तरफ जहां उसे गुदगुदा रहा था, वहीं दूसरी ओर सतीश का उस दिन का वह संकोच स्मरण हो आया था, और शायद इसीलिए वह घर में पार्टी का आयोजन होता देख अधिक प्रसन्न नहीं दिख रहा था। उसके प्रश्न पर सतीश को वह खुशी नहीं हुई जो पिछली बार उसने उनके सम्मुख प्रकट की थी। आज वह बनावटी रूप से उसके सम्मुख मुस्कुराता हुआ बोला, बस यूं ही दोस्तों से मिलने के लिए एक छोटे से जश्न का इंतजाम किया है। और उसका वह बनावटीपन साधुराम ताड़ गया, उसकी शुद्धता उभर आई, तब बोला, दोस्त भला वैसे नहीं मिलते क्या? मिलते हैं, लेकिन काम के समय, तब हंसकर बात कहां कर सकते हैं। सतीश ने उत्तर दिया, लेकिन वह ताड़ गया कि उसके पिता का मूड आज कुछ उखड़ा हुआ है, लेकिन इस पर खर्च क्या कम आता है? सोसाइटी में इज्जत बनाने के लिए यह सब तो करना पड़ता है बाबूजी, संयत स्वर में उत्तर दिया उसने। इज्जत जरूरी तो नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां देने से बढ़ती हो, चादर से ज्यादा लंबा पैर करने से घाटा ही होता है, लेकिन मैं अपनी चादर से बाहर काम नहीं करता बाबूजी। क्यों, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी जो एक एक पार्टी में 500-700 रुपया खर्च कर देते हो, फिर साथ में तुम्हारा घूमने फिरने का, घर का नौकर चाकर का खर्चा पूरा हो जाता है। और साधुराम का यह प्रश्न भी सही था, 1000-1200 वेतन पाने वाला अफसर कैसे 2500-3000 खर्च करके कह रहा था कि पांव उसके चादर से बाहर नहीं। लेकिन सतीश का उत्तर सुनकर साधुराम को महसूस हुआ था कि अपने खून पसीने से पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर वह जिस पुत्र का निर्माण करना चाह रहा था उसमें वह कहीं चूक गया था। तभी तो उसका बेटा किसी भी तरह से उसके विचारों के अनुरूप नहीं बना। सतीश ने उत्तर दिया, अकेले तनख्वाह ही तो नहीं मेरी, ऊपर से भी 2-3 हजार बन जाते हैं, तनख्वाह से दुगने कभी तिगुने। सतीश ने समझा था कि पिता सुनकर फूल कर कुप्पा हो जाएगा उसकी कमाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके शब्द सुनकर साधुराम पल भर के लिए तो स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर बोला, बहुत अच्छे बेटे, तुम्हारी यह बात सुनकर तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा काम करते हो तुम देश व समाज के लिए, जो जनता अपने कारिंदों को इतनी बख्शीश लुटा देती है। यह बख्शीश नहीं बाबूजी, हक है, जो प्रथा शुरू से चली आ रही है उसी के अनुरूप ही सब होता है। सतीश ने अपनी बात कही, ये प्रथाएं किस काम की बेटा, और फिर तुम्हारी ये काली कमाई पानी में ही तो बह जाती है, और ये तुम्हारे दोस्त भी तो तुम्हारे जैसे होंगे, वे भी ऐसी कमाई करते होंगे, प्रथा मानते होंगे इसे, फिर यह पार्टी देना भी प्रथा है, और प्रथा को निभाने पर कौन तुम्हारा एहसान मंद होगा? उनके लिए तो तुमने कुछ किया नहीं, केवल अपने समाज की प्रथा बढ़ाई है। साधुराम अपने प्रवाह में बहे जा रहा था, शान है इसी में, आज मैं किसी को बुलाता हूं तभी कोई दूसरा मुझे बुलाएगा। सतीश अपनी बात पर टिका था, उसे साधुराम का बहस को लंबा करना अखरने लगा, लेकिन साधुराम तो अपनी धुन में बहता था। बोला, यह झूठी शान का रोना अच्छा नहीं होता बेटा, खर्चे बढ़ाए जा सकते हैं, उन्हें कम करना दुखदाई महसूस होता है। तब सतीश ने बहस समाप्त करने के अंदाज में कहा, आप यूं ही बेकार का किस्सा ले बैठे हैं बाबूजी, आप आज तक जिस वातावरण में रहे हैं उससे बहुत अलग और ऊंचा है हमारा समाज, आज आप छोटी बातें मत सोचा कीजिए। साधुराम को उसका यह ऊंचा शब्द और छोटी बातें अखर गए। तब वह बोला, कैसे ना सोचूं बेटा, मैं ठहरा अपड़ गंवार और छोटे समाज का आदमी। उसके स्वर में दुख का भाव आ गया था। यह शब्द उसे कहीं गहरे में जाकर लगे थे। तब वह वहां से हट गया। अपने कमरे में जाते जाते उसने सतीश को कहते सुना, ना जाने हरदम सबको गलत क्यों समझते हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। क्या वास्तव में सतीश के कहने का ढंग ही गलत था? सूरज ढलने तक साधुराम कमरे में बैठा रहा। तब तक उसका मन शांत हो गया था। मन उठकर बैठक में जाने को करने लगा था। घर में शुरू होने जा रही रौनक को देखने की तमन्ना उभर आई थी उसमें। तब वह उठा ही था कि सतीश कमरे में चला आया उसके। साधुराम ने उसकी ओर देखा। तब सतीश ने कहा, आप दिन भर कमरे में ही पड़े रहे, क्या बात? अब मन ठीक था इसलिए बहाना बना दिया। तबीयत कुछ खराब महसूस हो रही थी। अब कैसी है? सतीश ने पूछा। वह कुछ और भी कहना चाहता था उससे। कुछ आराम है, साधुराम ने कहा और सोचा कि सुनकर उसका बेटा पार्टी में शरीक होने के लिए कहेगा। तो आप आराम कीजिए, कहीं और तबीयत ना खराब हो जाए, आपको खाना कमरे में ही पहुंचा दूंगा। यह शब्द कहकर सतीश ने जैसे चैन की सांस ली। तब चाहकर भी साधुराम का दिल नहीं किया कि वह कह दे कि ऐसा कुछ नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन पुनः उसकी आंखों में सतीश का वह संकोची रूप उभर आया। वह मन मार कर पुनः पलंग पर लेट गया। सतीश मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसका मन खिन हो उठा। बाहर बड़े कमरे में पार्टी हो रही थी। साधुराम चुपचाप खिन मन से पलंग पर लेटा हुआ। शांति शायद किसी दूसरे कमरे में थी। तभी सुमिता ने खाने की ट्रे लिए कमरे में प्रवेश किया तो साधुराम ने शुद्ध स्वर में कह दिया, मुझे भूख नहीं है। ऐसा सुनकर सुमिता ने मधुर स्वर में पूछा था, क्या बात है बाबूजी, तबीयत तो ठीक है? ठीक है, मन नहीं कर रहा। हमसे कुछ गलती हुई बाबूजी, आप नाराज लगते हैं। सुमिता उसके मनोभावों को ताड़ गई थी। गलती कौन करता है बेटी, और यदि कोई करता भी है तो स्वीकारता कौन है? साधुराम का स्वर गंभीर था। आप क्या सोच रहे हैं फिर, खाना खाइए ना। सुमिता का आग्रहपूर्ण स्वर सुनकर तब साधुराम ने उसके मुख की ओर देखा था। सुमिता के मुख पर आशा के भाव थे, जैसे उसे विश्वास था कि साधुराम उसकी बात नहीं टालेगा। साधुराम ने उसके मनोभावों को समझा और खाना खाने लगा। तब सुमिता कमरे से बाहर चली गई थी। बड़े कमरे से आ रही कहकहों की आवाजें सुनते हुए साधुराम सोच रहा था कि वह कभी इन कहकहों में सम्मिलित नहीं हो पाया। उसका जीवन आरंभ से ही सूना रहा है, अब भी सूना है और लगता है सदा सूना रहेगा। एकांत चुप्पी उसके जीवन पर्यंत साथी रहेंगे। सतीश अपने पिता के इस अकेलेपन को जानकर भी उसे दूर नहीं करता। उसमें से भी वह शक्ति समाप्त हो गई है जो उसे कह सके इन कहकहों में खुलकर भाग लेने को। सतीश ने भी तो नहीं कहा उससे, बाबूजी आप भी मेरे दोस्तों के साथ बैठकर हंसिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। कितना अलगाव महसूस कर रहा था वह। आंसुओं को वह रोक नहीं पाया। ऐसा सोचकर मुंह की ओर जाता रोटी का टुकड़ा हाथ में ही रह गया था और वह सामने की ओर देखने लगा था। एक टक तभी सुमिता उन्हें आ गई। बाबूजी कुछ चाहिए? तभी उसने साधुराम की आंखों से आंसू बहते देख लिए। चौंक पड़ी एकाएक अविश्वास भरे स्वर में बोली, बाबूजी आपकी आंखों में ये आंसू हैं? साधुराम को उसका ये स्वर सुनकर एकाएक अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो उसने स्वयं पर ही आश्चर्य प्रकट किया। सुमिता अपने ससुर की यह दशा देखकर बेचैन हो उठी थी। उसने तब पूछा, बाबूजी क्या हुआ, आप रोए क्यों? यूं ही बेटी, कुछ भी नहीं, साधुराम ने बात टालनी चाही। नहीं बाबूजी, अवश्य ही कोई बात है, मुझे बताइए, आपको मेरी सौगंध। सुमिता के स्वर में स्नेह था और यह स्नेह साधुराम के मन में छिपी बात को उगलवा कर ही रहा। तब उसने आर्द्र स्वर में कहा, पिछली बार मुझे पार्टी में शामिल किया था तुमने, बहुत आनंद आया था मुझे तुम्हारे अतिथियों के कहकहों को सुनकर। मैं आज उनमें शामिल तो नहीं हो सका, पर अपने अतीत में जा पहुंचा। उन जैसी उन्मुक्त हंसी मैंने आज तक नहीं देखी, मैं इतना खुलकर कभी नहीं हंसा। यह सुनकर सुमिता स्तब्ध रह गई। उसके मस्तिष्क को उन शब्दों ने झकझोर सा दिया, आंखों में उसकी दो आंसू टपक पड़े। आप भी चलिए बाबूजी, आंखें पोंछकर सुमिता ने कहा। कहां? नहीं नहीं, वहां मेरा जी घबराएगा, मैं अब नहीं बैठ सकता शोर में, मुझे यहीं से आनंद आ रहा है। तब उसे लगा इन्हीं शब्दों को कहने के साथ साथ भीड़ में शामिल होने की उसकी इच्छा मर गई है। उसे अपने हृदय की धड़कन तीव्र महसूस हुई। तुम जाओ, अब सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया। 2 महीने और बीत गए। साधुराम ने देख जान लिया कि उसमें और उसके बेटे में बहुत फर्क है। विचारों का अंतर तो ऐसा है कि जिसे वह क्या कोई भी नहीं मिटा सकता। और तब उसने सोचा कि उसके पास रहकर अपने भीतर हीन भावना को उत्तरोत्तर पनपने देने से बेहतर उसके लिए यही होगा कि वह शांति को लेकर खन्ना लौट जाए। पुत्र से वह संबंध तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए लौटने का बहाना उसने बनाया घर की याद, बस और कुछ नहीं। वह अब भूल कर भी कल्पना नहीं करता था कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब सतीश उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करेगा, उसके विचारों के अनुरूप चलेगा। अपनी बूढ़ी हड्डियों को आराम देने की बात उसने विचारनी छोड़ दी थी। अब साधुराम था, शांति थी और उनकी पैतृक दुकान थी, अलग सा छोटा सा संसार था जिसका सतीश के संसार से संबंध जोड़े रखने का काम चिट्ठियां कर रही थी। पिता पुत्र की आत्मा कभी एक थी, शांति का कभी एक ही अस्तित्व था जिसके दो पहलू थे, सतीश जिसे माँ के रूप में देखता था और साधुराम जिसे अपनी पत्नी मानता। अब शांति के दो टुकड़े हो चुके, एक वही था वैसा ही जैसा उत्पत्ति के समय था, उससे उसको वही प्यार मिलता था, वही सुख। दूसरा टुकड़ा अलग एक कोने में जा पड़ा था जिसके पास केवल दो ही शब्द थे, माँ को प्रणाम, माँ को प्रणाम, बस और कुछ नहीं। माँ तेरी याद आती है, मन करता है उड़कर तेरे पास चला आऊं, ऐसा कुछ भी तो नहीं। उसके लिए माँ तो हर बार लिखवाती है, तेरी माँ हर पल तुझे याद करती है, तेरे लिए रोती भी है, मन बहुत करता है उसका तुझे देखने को, तू आकर उससे मिल जा। लेकिन उत्तर वही आता, बस केवल माँ को प्रणाम, और कुछ नहीं।